नमो भगवते वासुदेवाय
नहीं फिलोसफी से डेमोनिक फिलोसफी से है ना।
आपसे भी पूछ रहे हैं सच सच, आप भी हमें बताओ ऐसा कौन व्यक्ति जो यहाँ आता है और आपको ये वैष्णव सिद्धांत बताता है। तो इस पूरे प्रसंग में हम देख सकते हैं कि जो लोग जिस तरह के मेंटालिटी रखते हैं, जिस कल्चर में बड़े बड़े होते हैं, उनके संस्कार या उनका जो ज्ञान है वो अगर जब किसी दूसरे ज्ञान से प्रभावित होता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। असुरों का जो कुल है उनको जो शिक्षा देने के लिए भेजा, तो असुरों को जो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? उनको ये बताया जाएगा कि राजनीति क्या होती है, हम ममेति, ये मेरा, ये मित्र, ये दुश्मन, इनसे ऐसे बात करनी है, इनसे ऐसे काम लेना है, जैसे कल बताई चार चीजें, साम, दाम, दंड, भेद, ये नीतियां सिखाई जाती हैं और इन नीतियों से चलना सिखाया जाता है। इसके अलावा किस प्रकार जो है लोगों का मतलब डेमोनिक में होता क्या है, अहम ममेति, अपने को सब कुछ मानना और उसी के आधार पर सब कुछ संग्रह करना। 16वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान भी डेमोनिक नेचर के विषय में बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति, उसकी क्या भावना रहती है, किस प्रकार की डिजायर्स रहती है और किस प्रकार के कर्म रहते हैं उस व्यक्ति के, जिसमें कि वो मानता है कि मेरे पास आज इतना है, कल इतना हो जाएगा, मैं और कमाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा, मैं इतना दान कर दूंगा फिर मेरे सारे संबंध देखेंगे। तो इस तरह के सारे कर्मों को, इस तरह के सारे विचारों को भगवान ने बताया क्या है, ये आसुरी गुण है। और जिस परिवेश में हम पले बड़े हैं, हम नहीं कह सकते कि हम बड़े वैष्णव परिवेश में पले बड़े हैं, है ना, वो भी एक किस्म का जितने भी स्कूल या कॉलेजेस में हैं, जैसे कल भी बताया जाता है, सारे के सारे वही शिक्षा देते हैं, इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई जाती है, राजनीति पढ़ाई जाती है और जो और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसका ध्येय भी खाली क्या होता है, इंद्र तृप्ति। अर्थात आपको जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो सत्य है, उसे दूर ले जाना। सत्य है कि हम लोग ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन ज्ञान क्या दिया जा रहा है कि ये शरीर ही हम है और यहां जितना भोग कर सके कर ले। तो जितना भी हमारा आसपास का परिवेश है, जितने भी स्कूल कॉलेजेस या फैमिली एटमोसफेयर भी है, वहां पर सभी लोग उन्हीं स्कूलों से पढ़े लिखे हैं जहां पर केवल अज्ञानता की पढ़ाई होती है, जहां पर बिल्कुल भी भगवत तत्व पर या आत्म के तत्व पर चर्चा नहीं की जाती। और जब इन टॉपिक्स पर चर्चा नहीं हुई तो इनसे संबंधित जिसको ये ज्ञान है आत्मा शरीर का, तो उसके जीवन में जो क्वालिटीज आएंगी, जो आगे बताई गई है उसमें, इसमें भी बताएंगे 16वें अध्याय में कि सुरों के क्या गुण हैं और 12वें अध्याय में भी ज्ञान के विषय में बताया कि ये सब ज्ञान है, भगवान ने बताया कि मेरी समझ से सब ज्ञान है, तो वो सब क्वालिटीज नहीं आएंगी उसके अंदर। तो जिसके अंदर ऐसा आत्म साक्षात्कार नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं जिसमें भगवत साक्षात्कार हो, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी यहां ग्रहण करता है तो सारा का सारा क्या है, दूषित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समाज में हम रह रहे हैं और जिस समाज में हम देखते हैं कि अज्ञानता में ही सब लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और अज्ञानता से भरे ही लोग समाज का नेतृत्व भी कर रहे हैं, वही उसी अज्ञानता के समुद्र से निकले कुछ लोग टीचर भी बने हुए हैं, उसी अज्ञानता से निकले कुछ लोग पॉलिटिक्स में हैं, कुछ दूसरे व्यवसायों में हैं, और पूरा का पूरा समाज जो है अज्ञानता से भरा हुआ है। इसलिए इस समाज की समस्याएं कभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता होगा कि ठीक है चलो ये सरकार चली गई तो दूसरी जो सरकार आएगी वो शायद इस प्रकार की कुछ नीतियां बनाएंगे जिससे हम लोग खुश हो जाएंगे, या अभी थोड़ा समय खराब चल रहा है, आने वाला समय कुछ अच्छा हो जाएगा, अगला साल अच्छा चलेगा, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर ना, तो शायद वो अच्छा हो जाएगा। पिछली बार जिन्होंने मुझे विश किया था उसमें शायद अच्छा मजा नहीं आया, कुछ हुआ नहीं, तो अब मेरा अच्छा नहीं चला साल। तो इन विशेष से कोई काम नहीं चलने वाला, इन योजनाओं से कुछ काम नहीं चलने वाला, है ना। सड़कों पर वाहन बढ़ते जा रहे हैं तो भी परेशानी है, सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही है तो इसका मतलब नहीं खाली चलेंगी, वहां परेशानी है। आज की समस्याओं को लेकर जो समाधान निकाले जा रहे हैं वो आज की समस्याएं को लेकर है, तब जब समस्याएं बढ़ गई हैं और जो समाधान किए जा रहे हैं, जब तक वो समाधान पूरा होगा तब तक पता चलेगा वो चार गुना समस्याएं और बढ़ चुकी हैं। तो हर जगह जो है कलह और कलेश और समस्याएं रहेंगी। इन सब समस्याओं के पीछे एक ही कारण है और वो क्या है कि समाज का, समाज के अंदर ज्ञान की कमी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि समाज में अगर कमी है तो केवल एक चीज की, वो क्या है, कृष्ण भावनता। कि जब तक व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं चलेगा, सही ज्ञान अर्जित नहीं करेगा, तब तक इस समाज में क्या पूरे विश्व में शांति नहीं हो सकती। कई बार बोला जाता है कि जैसे हिंदी चीनी भाई भाई या ये देश और वो देश, हम लोग एक ही क्योंकि धर्म के हैं तो इसलिए शायद हमारी इच्छी बनेगी, ऐसा नहीं। जिन देशों में एक ही जाति समूह के लोग हैं और दूसरे देश में भी दूसरे जाति समूह की बाउंड्रीज मिल रही हैं, तो उनके अपने कलेश चल रहे हैं, अपनी लड़ाई चल रही। और जिन देश में किसी देश का दूसरे देश से अगर कोई समस्या नहीं है तो उसकी अपने देश में भी समस्याएं चल रही। और इन सब का कारण है केवल और केवल एक, अध्यात्म की या भगवत ज्ञान की कमी। प्रभुपाद जी जब विदेश धरती पर थे, अमेरिका में थे, तो वहां पर बढ़ रहे पाप और क्राइम को देखकर कई बार कमिश्नर लोग भी प्रभुपाद से बात करते थे, मिलते थे, तो वो पूछते थे कि हमारे समाज में जो है इतना जो है इसका क्या कारण है, समस्याएं क्यों है। तो प्रभुपाद जी कहते थे इसका कारण है, कई कारण बताते, उसमें मेन बताते थे कि गो हत्या बंद होनी चाहिए। या कई बार लोग पूछते थे प्रभुपाद जी का तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो प्रभुपाद जी कहते थे स्टॉप काउस स्लॉटरिंग। क्या कारण है इसका? क्योंकि जब धर्म के प्रतीक या जो सबसे जो है प्रिय पशु है भगवान का और जो सबसे ज्यादा पूजनीय है, उसका इस प्रकार वध हुआ केवल इंद्रदीप्ति के कारण या अज्ञानता के कारण, लोग सारे पैचअप सॉल्यूशन करेंगे लेकिन ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र में, वेदांत सूत्रों में भी कई कुछ सूत्रों में ही बात कह दी गई है, तमसो मा ज्योतिर्मा, मतलब कि तमस का मतलब अंधकार। अब जो है व्यक्ति को चाहिए वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। फिर कह रहे असत मा सत्यमेव, भाई असत से जो झूठ है या जो टेम्पररी है उससे किस तरफ चलो, परमानेंट की तरफ चलो। मृत्यु मां है ना अमृत गम्य, कि भैया मृत्यु से किस ओर जाओ, अमृत को प्राप्त करो। ये सूत्र है, इन सूत्रों पर जब इनको खोलते हैं तो पूरी फिलॉसफी डिस्कस हो जाती है। लेकिन आज बड़े बड़े कॉलेजेस में भी इन शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन जो यहां पर जेब में लोगो लगाना होता है ना उसके नीचे छोटा सा लिखा होता संस्कृत में, शिक्षा में नहीं है। स्कूल के बोर्ड पर लिखा होगा लेकिन व्यवहार में या उसमें नहीं। इसलिए जब प्रभुपाद जी को कोई व्यक्ति अपनी यूनिवर्सिटी दिखा रहा था कि डिपार्टमेंट में लेके गया, प्रभुपाद दिस इज द डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, दिस इज डिपार्टमेंट फॉर केमिकल एंड साइंस, सारे दिखा दिए, प्रभुपाद ने कहते हैं डिपार्टमेंट फॉर नॉलेज ऑफ सोल, कहते नहीं, कहते तो फिर तुमने जितना कुछ बनाया ना ये सब बेकार है। और सच में बेकार है। इसलिए प्रभुपाद जी इन आध्यात्मिक इन आधुनिक स्कूलों को क्या बोलते थे, स्लॉटर हाउस बोलते थे। इतना खतरनाक स्टेटमेंट कि मतलब ये अगर स्लॉटर हाउस है तो उसमें रहने वाले कौन है, मवेशी कौन है, हमारी संतान है। तो स्लॉटर हाउस से मुक्त किया गया था। क्यों किया गया था कि इसमें 12 साल खराब करने वाला बच्चा या जितने भी साल वहां रहता है, निकलने के बाद एक पशु की भांति रहता है वो। पहले वो उसकी मां उसको भोजन कराती थी, अब वो खुद भोजन करने की तैयारी कर रहा है, बस यही तो फर्क है। तमसो मा ज्योतिर्गमा नहीं हो रहा, मतलब अंधकार से उस दयनीय स्थिति से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं होगी। और उनका सोचिए क्या होगा जो उन स्कूल्स में अध्यापक है, एक बार एक स्कूल के प्रिंसिपल हमारे यहीं सिलेक्शन में बैठे थे शाम को, किसी दूसरे स्कूल के थे, तो यहाँ पर बैठे थे और बातचीत हुई। तो जब ये सब जब जब डिस्कस हुआ तो उनको हैरानी हुई बड़ी। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल यही है, और हमें पढ़ाना पड़ता है ये सब किताबों, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। अभी सुनने में आया कि आप कितने लोगों ने बीए किया, तो खैर बड़े कोई करता है बीए, बीए तो पुराने लोगों ने की होगी क्योंकि तब वो इंजीनियरिंग था। बीए बीकॉम भी कर लेता तो पूरे समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। अभी किसी मुझे बीए को उनका हाथ ही नहीं खड़ा करना है, ये मानो मुझे टेंथ के बराबर भी नहीं आज। तो लेकिन जिनको पहले प्राउड होता था कि ये साहब इंजीनियर, अब उनको भी शर्म आती है क्योंकि वो हेड कांस्टेबल की जॉब कर रहे हैं, एसएससी के फेवर दे रहे हैं, क्योंकि जॉब ही नहीं है मार्केट में। अब क्या चाहिए, अब कौन सी डिग्री ले, अब समस्या है, अब अहंकार भी नहीं कर सकते। तो प्रकृति जो है उनको हम्बल बना रही है। तो वो प्रिंसिपल जी बैठे, तब उनको लगा सच में कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा नुकसान है कि जो अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा लोगों में तो वो तो पशु भांति जैसे हम भी अपने संतानों को भेज रहे हैं, बेटा बड़े की बारी आ गई, तू भी कट मतलब तू भी जा, और वो जाएगा उस पर कुछ समय बिताएगा, बाहर निकलेगा, वो भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेगा, और उसके बाद एक दिन उसको भी काल रूप में कृष्ण गले लगाएंगे। कोई दूर दूर तक इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलने की कोई योजना ही नहीं, और एक दूसरे पर हम लोगों का मन जो एंटरटेनमेंट है वो समाज को देख के होता रहता है। आए दिन टेलीविजन कहते इतने सारे चैनल हैं, 950 चैनल टीवी चैनल, कितने 33 करोड़ देवी देवताओं की तरह हो जाएगा। तो एक एक को बदलने में व्यक्ति का जीवन खत्म। भाई मैंने तो अभी एक ही बार देखा था, मुझे बुला लिया आपने, ऐसा हो जाएगा। अभी एक ही बार देखा था सारा कि किसमें क्या क्या है, तो दिन बीत गए, 3-4 दिन बीत जाते, 950 चैनल बदल गए। तो व्यक्ति आंख नहीं झपकता, युगा युतम निमेषेण चक्षुषा, मतलब ये जो है पलक झपकना भी क्या है, कई युग के बराबर प्रतीत होता है जब टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम आ रहा होता है, और इन लोगों का केवल एक काम है, मालूम है क्या काम है, कि ऐसी खबरें ढूंढना, किसी भी चीज को ऐसे रोचक बनाना कि आप आंख तक ना झपक सको। एडवर्टीजमेंट भी दिखाते रहे कि उसको भी देखता था छूट ना जाए। क्यों कि आंख नहीं झपकनी इसको, और मेरा ही चैनल देखे और ये सारे प्रयास कर रहे हैं कि मेरी टीआरपी सबसे ज्यादा, 950 चैनल एक ही तैयार कर रहे हैं क्या कि मेरा चैनल सबसे ज्यादा देखा जाए, तो क्या दिखाऊं, इसलिए क्या दिखाने के मामले में कुछ भी दिखाता है। वो देखता कि समाज में कौन से लोग ज्यादा है, तामसिक ज्यादा है, तामसिक तो टीवी खोलेगी है ना, तो कौन से लोग ज्यादा है, राजसिक ज्यादा है, रजोगुनी ज्यादा है, तो रजोगुनों को क्या चाहिए, काम सुख है ना, नग्नता और क्रिस्पी न्यूज। अब मुझे बताइए आपके साथ कोई घटना हुई, आप पुलिस स्टेशन गए, आपने एफ आई आर लिखवा दी, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी एफ आई आर एफ आई आर नहीं है, एफ आई आर तो वो है जिस एफ आई आर में कुछ क्या हो, थोड़ा दम हो, थोड़ा अलग हो। क्या है इस एफ आई आर में, इस न्यूज में क्या है कि इस न्यूज में इस पिता ने अपनी पुत्री के साथ कुछ गलत कर दिया, ये न्यूज है, तो वो न्यूज दिखाएंगे। अच्छा और क्या है जी, अच्छा जिस प्रकार हम लोग उनको लताड़ते हैं सुबह से शाम तक, तो इनको कोई व्यक्ति मिल जाए अगर धर्म का व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया है, तो सारा चैनल लेके पहुंचेगी, यस ये व्यक्ति ऐसा है, सुबह शाम अब इसने ऐसा कहा, और माय गॉड 50-50 कहते हैं, वो स्पीकर लगा के रखते हैं उसके आगे, बोलो कुछ, कुछ तो बोलो, एक सेंटेंस से बोल दो, कुछ तो बोलो, एक भी बोल दिया उस व्यक्ति ने तो वही न्यूज में चलता है, आज नहीं बोला, आज नहीं बोला। और व्यक्ति 24 घंटे, पहले तो इसकी न्यूज सुनी, फिर दूसरे की सुनी, फिर तीसरे की सुनी, इस तरह 50 चैनल्स की, पलक लगने तक का समय भी नहीं देने देते कि झटके, इतने मैच भी चलते हैं, इतने चलते हैं, उसको भी बड़ा कृष्ण बनाने के लिए कहते हैं। सुना कि कोई माताओं को भी नाश करवाते हैं वहां पर, चीयर लीडर। तो उसमें क्या कहते हैं वो, जब तक वो बॉल फेंकने जाएगा इतनी दूर जाता है वो, तब तक लोग किसको देखेंगे। जाने का समय, फिर भाग कर वापस आने का समय, जब तक खेलेगा तब तक क्या देखेंगे, तो इनको देखो। तो मतलब कहने का मतलब है, आंख झपक रहा था कि माया ने अपने हथियार इस प्रकार खोल कर रख दिए कि व्यक्ति बिल्कुल भी सोच ना पाए कि बेटा तू जा पा रहा है, होने क्या वाला तेरे साथ। इस एंटरटेनमेंट उछलते कूदते उठते कब जो है काल के मुंह में चला जाएगा पता नहीं चलेगा, और इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, ऐसी भी स्थिति है कि जब इसको कष्ट मिलते हैं ना यहाँ पर इस संसार के, दुख तकलीफें मिलती हैं, तो उन दुख तकलीफों को भी इतना सुंदर बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल देखिए आपने ना, ऐसा हॉस्पिटल के जाते जाते उसको अच्छा लगता है, मेरा घर भी ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं है। वो लोग आइडिया ले जाते हैं हॉस्पिटल से जाके, पॉट ऐसे रखना है, घर में चाकू छुरी का ऑपरेशन कर रहा है, चाकू छुरी कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, हर चीज मतलब वहां से सीख कर आता है। और फिर जैसे कई बार बताया लेक्चर में कि उसको एक अलग से अनुभूति होती है वहां पर बैठे बैठे, क्योंकि घर में रोज एक ही शक्ल देखता है उधर, और उधर जो है वो चाहे कड़वी से कड़वी दवाई भी कोई लेके आए बड़े मुस्कुरा के पीता है, और घर में मीठी से मीठी बात भी की जाए तो कड़वी दवाई लगती है वो। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ फेस, चेंज ऑफ अपीयरेंस, कोई और आ रहा है। और बात अलग है कि जितना उसमें खुश है वो बाल के बेल्ट के टाइम उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इवन हॉस्पिटल्स में बीमारी के समय, दुख तकलीफों के समय जो मेडिसिन भी देते हैं उसके पाउच भी आप देखें वो बड़ा सुंदर बना कर देते हैं। हाँ तो होता है, हाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में तो 24 घंटे टेलीविजन चल रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स बन रहे हैं और फास्ट फूड है वहां पर, आपको फील ही नहीं होने देंगे कि आपका कुछ जाना अंदर हमेशा के लिए। भाई आपके एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, वो गया तो गया लेकिन आपका चल रहा है। इसीलिए शमशान घाट, शमशान घाट जाने तक का थोड़ा बहुत हो जाता है लोगों को, चले गए चले गए, मतलब जाता नहीं तो चले गए, अब पैसे कौन देगा, अब रोटी कौन खिलाएगा, है ना, तो इसलिए दुख होता है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, तो ये अंधकार में समाज हम लोगों को भगवान का स्मरण करने का मौका नहीं देगा बिल्कुल। माया की एक ही चाल है कि इन जीवों को गलती से भी कृष्ण याद ना आए, इसलिए उसने इतने सारे जो है अपने हथियार डाल रखे मार्केट में कि व्यक्ति सोच नहीं सकता एक बार। और इन माया के खिलाफ युद्ध के बीच में हम लोगों को कुछ सर्विस स्टेशन खोल कर दिए प्रभुपाद जी ने, उन जीवात्माओं के लिए जहां पर ये लोग क्या कर सकें, आत्म साक्षात्कार कर सकें। नहीं तो क्या है कि अंधकार में ही जीते रहेंगे, अंधकार में ही स्कूलों में ही पढ़ते रहेंगे और अंधकार ही सीखते रहेंगे, अज्ञान ही सीख रहे हैं, मतलब एक एक शब्द अज्ञानता की तरफ है। अब सोच कर देखिए, जिस ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार नहीं, भगवत साक्षात्कार नहीं, या वो सद्गुण आना नहीं है जीवन में जिससे कि व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जा सके, उसके अलावा सारा का सारा जो सोपड़ ज्ञान है वो केवल अज्ञान है, और उसमें हमको डिग्री मिलती है, ये अज्ञानता की इसको ये डिग्री प्राप्त है। क्या किया भाई मैंने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। इसमें आत्म साक्षात्कार का कनेक्शन है क्या? गोल्ड मेडलिस्ट है ना। तो इसने जो है अपना जीवन इतना इतने घंटे के दिनों पढ़कर उन किताबों का जिसका कोई मतलब नहीं था, उस शिक्षा का जिसका कि आत्मा और भगवान, आप लोग में से कई लग रहा हो मुझे आज मुझे शिक्षा का इंग्लिश में बोल रहे इतना मुझे लग रहा होगा, बाकी में ठीक कर देंगे जाना नहीं। तो कई बार आधा लेक्चर सुनते लोग बाहर बात करते हैं जी, हमने आधा ऐसा सुना था वैसा सुना था, पूरा सुन लीजिए। तो क्या बता रहे, हाँ मतलब इतना समय उन पुस्तकों को पढ़कर, और फिर देखिए दो तरह का जीवन है जी, या तो जो व्यक्ति यहीं पर रहना चाहता है अज्ञानता में, तो वो यहीं पर सब कुछ करेगा, है ना, उसके लिए यहाँ पर हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तो अज्ञानता वाले व्यक्ति के लिए जैसे पशु है, उसके लिए रोटी जीवन का उद्देश्य, तो रोटी खाएगा, उसके लिए मादा पशु जीवन का वो करेगा, सोना जीवन का उद्देश्य सोएगा, तो वहीं तक खत्म थी। इसी तरह मनुष्य जीवन का जो पशु है वो भी क्या करेगा, उसका जीवन का भी अगर लक्ष्य नहीं मानो तो क्या करेगा, आहार निद्रा भय में जाए, उससे ज्यादा सोच नहीं सकता और उससे ज्यादा उसको कुछ चाहिए भी नहीं, उसको क्या लगता है कि इन चीजों में टाइम बिताना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहां पर अगर 1 घंटा लगाता हूं, 2 घंटा लगाता हूं, 4 घंटा में लगाता हूं, तो उसमें क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है, क्या मिल रहा है जी? ये अगर मैं 2 घंटे अपने बिजनेस में लगाता तो पैसा बढ़ जाता, और पैसा बढ़ने से मैं और तृप्ति के साधन जुटा लेता। यही तो मेंटालिटी रहती है, लेकिन इस संसार में जो अज्ञानता से भरपूर है, जहां हर व्यक्ति अज्ञानी है, वहां पे लीडर से लेकर सुकल ब्राह्मण से लेकर हर व्यक्ति केवल और केवल इंद्र तृप्ति को सेंटर बनाकर जीवन का लक्ष्य अपने जीवन किया है। लेकिन जिन लोगों को पता है, जो लोग सही समय पर सही संग में आ गए, और जिनको अब सही ज्ञान की वजह से ये पता चल गया कि हमने अभी तक जितनी दौड़ धूप करी है वो वेस्ट ऑफ टाइम था। देखिए दो व्यक्ति है, एक अध्यात्मवादी और एक भौतिकवादी। इन दोनों का जीवन मान लीजिए अगर 60-60 में खत्म होना है, दोनों का जब नहीं इकट्ठा शुरू हुआ। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो अज्ञानतावश इसी जीवन में नाना प्रकार की इंद्र तृप्ति करता हुआ, सुख और दुख का अनुभव करता हुआ, फ्रस्ट्रेशन एंजाइटीज और हर तरह का एंटरटेनमेंट करता हुआ जी रहा है, और दुखी परेशान डिस्टर्ब और जो भी है उसको जो तो वो करता हुआ उसने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, क्या, मृत्यु। और ऐसे व्यक्ति की गति क्या है, पुनरपि जनन पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठनेशन, फिर से किसी न किसी माता के गर्भ में फिर उन कृष्ण को सहेगा, मृत्यु के बाद फिर उसकी लाइफ के आगे टू बी कंटिन्यू, फिर आगे फिर टू बी कॉन्ट फिर आगे। लेकिन एक अध्यात्मवादी भी इसी तरह के 60 साल में जीता है। अंतर क्या है, अंतर केवल यह है उसको मालूम है कि आत्मा की क्या खुराक है और इस शरीर की क्या खुराक है। वो इस शरीर का इस्तेमाल करता है एक यंत्र के समान, कि जिसका उपयोग वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सके, पूरा प्रयत्न करता है। और उस प्रयत्न में सुसुखम करतम अवयम, शुरू से आनंद और सुख की अनुभूति शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जो कष्ट जो समस्याएं जो एंजाइटीज उस व्यक्ति को थी जो भौतिकतावादी जो डिस्टर्ब रहता था, ऐसी एंजाइटीज और ऐसा दुख उसको नहीं जो आध्यात्मिक रास्ते में है। और ऐसा नहीं है कि अध्यात्मवादी जो तपस्या कर रहा है उसकी वजह से खाना बंद कर दिया, नहाना बंद कर दिया, ऐसी चीजें बंद कर दी, नहीं, दिनचर्या उसकी भी वही है, जॉब पर या बिजनेस वो भी करता है, लेकिन हर चीज इन रिलेशन टू कृष्णा, कृष्णा मध्य में है और कृष्ण को सेंटर बनाकर वो हर कार्य कर रहा है, इसलिए उसका जीवन सुसुखम बहुत सुखपूर्वक है। मृत्यु इसकी भी होनी है, मृत्यु उसकी भी होनी है, लेकिन इन दोनों मृत्यु में अंतर जमीन आसमान का। रूपा जी कहते हैं बिल्ली के मुंह में अगर चूहा आ जाए, पहली बार तो पूरा दिन बसता रहता है, छुपता रहता है, तो जब वो आ जाए मुंह में तो उसके प्राण वैसे निकल जाते हैं बिल्ली को देखते कि गया, चाहे बिल्ली के मुंह में बेशक पहुंच आई हो लेकिन खत्म, बिल्ली ने पकड़ा वो प्राण हत्या देता है। और इसी बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा भी होता है, लेकिन बच्चे कभी ऐसा फील नहीं करता कि मुझे मार देगी माँ, कारण क्योंकि उसको पता है ये मेरी माँ है, मेरे भले के लिए मुझे इधर से उधर रखेगी, दैट्स अ होल ऑफ बिलीव। तो अध्यात्मवादी के भी जीवन शैली के बाद अंतिम जो समय है वो मृत्यु ही है देखने, और इसका भी मृत्यु है, लेकिन दोनों की मृत्यु में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वेदांत सूत्र क्या कह रहा है, मृत्यु मां अमृत कम है, कि भाई बार बार इस मृत्यु संसार से मृत्यु होने के जो चक्र में फंसे हो इससे अमृत को प्राप्त करो। तो इसमें फायदा क्या है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर है, जो व्यक्ति भगवत साक्षात्कार के पथ पर है, अध्यात्मवादी जो अपने जीवन को अध्यात्म अर्थात कृष्ण को मध्य में रखकर अपना जी रहे, खाना पीना सोना सब है लेकिन रेगुलेट है और शास्त्र सम्मत है, तो ऐसा व्यक्ति शांतिपूर्वक सुखपूर्वक जीता हुआ भी अंत में अमृत को प्राप्त कर लेगा। वास्तव में ऐसा कहा कि जो इस मार्ग में लग जाता है उसको तो वो जीता जाता क्या है, अमृत को प्राप्त कर चुका है, उसको चिंता नहीं है मरने की डरने की किसी भी तरह की, क्योंकि वो अब जीवन मुक्त हो चुका है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया है उस व्यक्ति को मरने से डर नहीं लगता। जिस प्रकार हम लोगों को रोज कपड़े बदलने पर डर नहीं लगता, लगता नहीं डर आज ये पहने कल ये पहने, तो वैसे ही वो जानता है कि चेंज ऑफ क्लोथ है खाली, चेंज ऑफ बॉडी, तो उसको इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, अब कहां जाऊंगा, अब मेरे साथ क्या होगा, ये उनको लगता है जिन्होंने गलत किया है जो अज्ञानता में है और जिन्होंने इतनी मेहनत कर इस संसार में इतना कुछ इकट्ठा कर लिया और अब क्योंकि उसको छोड़ना पड़ रहा है, अब उसके साथ कुछ जा नहीं रहा तो उसको डर लगता है क्या होगा और मैं जाने कहां वाला हूं। वृद्धावस्था प्राप्त होने के बाद भी बिल्कुल नहीं फील होता कि व्यक्ति को नहीं लगता कि बस अब खत्म होने वाला मरने वाला, उसकी योजनाएं अंतिम समय तक चलती रहती है। तद अभी न मुच्यति आशा पिंडम, सब कुछ शिथिल पड़ने के बाद भी उसकी आशाओं का पिंड खत्म नहीं होता। इसलिए चतुर वर्णम आयाश्रेष्ठ भावा ने चार वर्ण आश्रम बनाए, इसका सब व्यक्ति को पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने केंद्र बनाए ताकि इन चारों चीजों का पालन करने के लिए भक्तों का सहयोग किया जा सके, उनको मार्गदर्शन किया जा सके, तब जाके व्यक्ति जो है जो अध्यात्मवादी है वो अमृत को प्राप्त करेगा। और अमृत का मतलब यह है कि नो मोर बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ फुल स्टॉप। और ये तो एक बाय प्रोडक्ट है कृष्ण प्रेम का कि उसकी उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, या होगा तो कृष्ण की इच्छा से किसी और लीला में या कहीं और जा सकता है, लेकिन भक्त को चिंता नहीं होती। तो बाहर जो स्कूल है या जो शिक्षण स्थान संस्थान है ये केवल ट्रेनिंग ऑफ एंजाइटी है, यहाँ पर जो है एंजाइटीज और ट्रबल्स और इन सब की ही जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। इसलिए समाज में जितने दुख जितने तकलीफें किसी भी इश्यू में कहीं पर भी जो प्रॉब्लम है उसका केवल मात्र एक कारण है कि लोग कृष्ण भावना में आंदोलन में नहीं। अगर एक सेब पड़ा है और चार खाने वाले तो लड़ाई होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्त है मालूम है कि दूसरे भक्त की सेवा करनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सब बांट के खाए, तो जब तक लोग और ये पूरा समाज जो इतने तरह से कोशिश कर रहा है, एक सरकार आती है तो वो बातें बता सरकार निकम्मे निकली, दूसरी आती है वो सरकार निकम्मे निकली, क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि पैसे से सुख है, हर व्यक्ति को लगता है कि ज्यादा अधिक जो है अगर उसके ऊपर पोजिशन रहेंगी तो वो सुखी रह पाएगा, ऐसा नहीं, ये सारी चीजें तो यही रह जाती है। बड़े से बड़े लोग आए और वो चले गए तो हम ऐसे कौन से जो प्लॉट साथ लेके जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। लेकिन ये मेंटालिटी डेवलप कहाँ हुई, इसी एटमोसफेयर में, कंटेमिनेटेड एटमोसफेयर है स्कूल कॉलेज जहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर हर समय हमारी एजुकेशन हमारा परिवार की शिक्षा या हमारा वातावरण एक ही जगह ओरिएंटेड है, किस तरफ, धन की तरफ। बच्चा देखता माता पिता के धन के पीछे भाग रहे हैं, धन कम होता तो दुखी होते हैं, धन ज्यादा होता तो सुखी होते हैं, तो उसको बचपन से पता चलता है कि धन ही सब कुछ है। वो लीडर्स की तरफ देखता है, इसने इतने का घोटाला किया, इसने इतना का घोटाला क्यों किया, भाई इतना खा भी नहीं सकता बट फिर भी किया, क्योंकि धन लीडर को लगता है कि मैं सब खा सकता हूँ, ये सब मैं इससे खुश हो जाऊं। तो पूरा का पूरा समाज मनी कॉन्शियस है, जबकि होना क्या चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस। तो जब लोगों के जीवन का लक्ष्य लोगों को पता चल जाएगा कि जीवन जीने के, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे एक व्यक्ति एक गाय और एक एकड़ जमीन के साथ पूरा जीवन सुख शांति और समृद्धि से जी सकता है, कोई चिंता नहीं। लेकिन बेचारे कोई किसान जमीन बेच बेच के शहरों में आ रहे, क्योंकि टीवी वहां पहुंच गया तो वो बोलते क्या करें, कोई इधर आएंगे जहां पर सारी चीजें हो रही, और फिर यहां पर आकर वो बेचारा नौकरी कर रहा है, जी सकता था राजा की तरह या भिखारी की तरह जीना, और फिर भूल जाता भगवान, है ना। तो ये जब तक हमारे समाज का, हमारी पुस्तकों का, सिलेबस का, स्कूल में जब तक केवल जॉब ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड गोल रहेगा, तब तक इस पूरे समाज में, क्योंकि तभी तो ये इच्छा है ना, एक व्यक्ति घर में दो भाइयों से इसलिए लड़ाई हो रही है क्योंकि मुझे ज्यादा चाहिए, एक परिवार और दूसरे परिवार के इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन मेरे को ज्यादा चाहिए, एक जाति और दूसरी जाति में झगड़ा हो रहा है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ, फिर एक देश और दूसरे देश में इसलिए संघर्ष हो रहा है क्योंकि सबको लगता है कि पोजिशन सम्मान हो चाहिए। तो जब तक हम ऐसे समाज का वातावरण वो तैयार नहीं करेंगे जिसमें कि वासुदेव कुटुंबकम बोला गया, जैसे ना सारा पूरा संसार जो है कृष्ण का ही है, और हर व्यक्ति का ध्येय जब आत्म साक्षात्कार नहीं रहेगा तब तक लोग जो है परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, कितनी सरकारें आ जाए, कितने लोग बदल जाए, कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक जो मेन पॉइंट है वो मिसिंग है, आत्म साक्षात्कार, कृष्ण भावना ये मिसिंग है। इसके अलावा जो कुछ कर लीजिए सब बेकार है। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए कुछ अच्छा फील हो सकता है, कुछ अच्छी योजनाएं बन सकती है, लेकिन परमानेंट ही नहीं। इसलिए हर चीज का सलूशन रूपा जी कृष्ण भावता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इन ग्रंथों का अध्ययन करके कम से कम अपने को सबसे पहले सेव करे, और फिर अपने नजदीकी, है ना, और फिर पूरे समाज में। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग देखिए, इस उसमें बात कर रहे थे कि अगर जैसे एक पहाड़ी से पानी गिरता जाए, है कि नहीं, तो नीचे की तरफ बड़ी तेजी से आता है, उसी तरह धर्म का भी पतन इसी प्रकार था। जब सत्युग था तो धर्म चार स्तंभों पर खड़ा था, बहुत अच्छा, हर व्यक्ति धर्म का पालन करता था, एक आधा कोई हो गया होगा तो सब, तो ये उसके समान है जैसे ग्लेशियर पर बर्फ जमी हुई है, तो धर्म है परिस्थिति, धीरे धीरे हल्का हल्का बर्फ हिलने लगे, डूलने लगे, नीचे गिरने लगे, तो त्रेता योग का समझ लीजिए, थोड़ा पाप बढ़े, द्वापर में 50% करके खत्म हो गया, तो अब लिक्विड फॉर्म में आते समझ लीजिए। अरे कौन सा युग है? कल युग, तो फॉलन शुरू हो गया, और अब इसने गिरना है नीचे, बस 432,000 में सारा का सारा नीचे आ जाएगा। तो हमारी क्या स्थिति और हम कहां हैं? क्योंकि अभी कलयुग का शुरुआत हुई और धर्म जो है बहुत तेजी से गिरना शुरू हुआ है अभी, तो यहां पर कई बार हम लोग समाज के उतार चढ़ाव को देखकर बोलते हैं ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इस जाति ने ये कर दिया, उस पर इतनी सरकार चली गई, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। हाँ, लक्षण प्रकट हो रहे हैं, लेकिन जो पानी गिर रहा है बहुत तेजी से नीचे, बताइए कलयुग में 10,000 साल का जो समय है, पानी गिरता है ना तेजी से गिरता है, लेकिन एक ऐसा पीने के लेवल पे आगे जो ऐसा है थोड़ा सा जमीन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऐसा है, तो पानी में से गिरा और अभी थोड़ा सा ऐसा जाना पड़ा उस पानी को, समझ पा रहे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, और ये समझ लें 10,000 का स्वर्णिम युग है, समझ लीजिए रुक गया ऑलमोस्ट फॉल डाउन, धर्म स्थिर हो जाएगा, और उसके बाद फिर जैसे वो जगह खत्म होगी और तेजी से कुछ, तो ये होकर समझ तेजी से जाकर खत्म कर देगा सब कुछ, कोई योजनाएं नहीं चलेगी, सारी मारकाट चलेगी, सब कुछ हो जाएगा। तो अगर तो आप ये लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हो बीजेपी के, तो आते रहिए, और अगर बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 साल का जो टाइम है, जो पानी रुक गया थोड़ी देर के लिए, तो उसमें भक्ति को बढ़ाकर, भावना को जप कर कर, अपने को शुद्ध कर कर, अध्यात्मिक जगत में एंटर हो जाए, ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। फिर आप किसी देश को, किसी राजा को, समाज को ये दोष देते देते खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए केवल अपने को बचाओ। अपने को बचाने का मतलब है कि धर्म ने तो गिरना ही गिरना, खत्म हो ही रहे, हम धर्म का पालन करें और जितना ज्यादा हो सके दूसरों को बचाएं, जन्म सार्थक करें कर पर होगा, है ना, मटेरियल कंडीशंस के बेसिस पर हम लोग उसके चक्र में ना फंसे, ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा, ये बढ़ गए, ये कम हो गए, ये हो, कुछ नहीं होगा। भगवान को अगर इस सृष्टि में कुछ करना है तो केवल चिंतन करना होता है, उससे ज्यादा होता करना, इस सृष्टि में बड़े से बड़े जो आंदोलन हुए या कोई ऐसा व्यक्ति बना, तो भगवान ने किसी एक को एम्पावर किया हमेशा। एक को एम्पावर करते हैं बड़ी से बड़ी क्रांतियां हो जाती है ना, और कुछ ना कुछ बदल देते चीज। तो ये समाज भगवान की ही योजनाओं से चल रहा है, तो इसलिए इसमें हमारा चिंता करने का विषय नहीं है। हमें चिंता किसकी करनी है कि चिंतन हो रहा है कि नहीं, किसका? तो हमें प्रयास करना है कि हम लोग शंड अमरक स्कूल में रहते हुए उनसे पूछ रहे हैं कि भैया किसने सिखाया तुम्हें ये सब। और ये हमारे परिवार में होता है, जब कोई कोई भक्त बन जाता तो कहते कहाँ से जा रहे हो आजकल, नहीं क्या सब फालतू बोल रहे हो ना, हमने तो ऐसे आज तक सुना ही नहीं, कभी सीखा नहीं, तुम कोई नई बात कर रहे हो। तो रोकने का प्रयास करते, पूछते कहाँ जा रहा है आजकल। हाँ जी, हाँ कल एक भक्त यहाँ गए थे हम, तो उनके ग्रुप था वो लड़कों का दोस्तों का, तो खाना पीना चलते ही होगा, तो अचानक ही व्यक्ति ने उनके बीच में बोल दिया, कहते यार मैं ना आया नहीं करूँगा, इस पार्टी में बैठा करूँ। उसने इस काउंट नहीं जाना शुरू कर दिया, कहता हाँ क्योंकि वो चाहता था, मैंने उसको मालूम है यार क्या नहीं बोलते क्या होता है। तो दोनों अब जो है अच्छे भगवान के सोलह माला का जो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही लोगों के अंदर शुद्धता आती है और जो लोग प्रयास कर रहे हैं अपने को बचाने का, तो दिखते हैं लोग समाज में दिखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमारे जैसा नहीं है, क्योंकि हम तो आहार निद्रा भय मिथुन को जीवन का लक्ष्य मानकर, धन को जीवन का लक्ष्य मानकर यहाँ पर डिस्टर्ब चल रहे हैं, बट ये व्यक्ति कुछ अलग है, इसका लक्ष्य कुछ अलग है, इसलिए एंजाइटी नहीं है, इसलिए दुखी नहीं है, इसलिए मारामारी नहीं है इसके जीवन में, इसलिए ये वो फालतू गंद नहीं खाता जो हम खाते हैं, ये थोड़ा सा रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जी रहा है। तो ये चीज केवल अभी तक तो भगवान की कृपा से इस आंदोलन के द्वारा पूरे विश्व में फैल रही है। तो हमारा एक एक भक्त उस पारस मणि की तरह है, पारस पत्थर का मतलब होता है जो लोहे को छुए और क्या बना दे, सोना बना दे। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतनी पारस मणियां तैयार की हैं कि जो लोहे को छूकर सोना नहीं बनाती, क्या बनाती है, पारस पत्थर बना देती है, ताकि वो व्यक्ति भी जो है दूसरे को छुए तो क्या बना दे, पारस बना दे, सोना बना दे, पारस बना, ताकि वो प्रचारक बन जाए और उसका जीवन, उसका आचरण, उसकी भक्ति को देखकर वो जो लोग, जैसे होता है ना कई बार आप ड्राइव कर रहे हो, आपका अचानक जाम लगे है ना, तो अचानक कुछ गाड़ी दूसरी तरह से मुड़ रही होती है, तो सब लोग मुड़ते हैं यहाँ से उल्टा क्यों जा रहे हैं, तो भी पीछे मुड़ जाएंगे। तो उसी तरह अभी सारे लोग एक ही जगह जा रहे हैं और एक आधी गाड़ी इधर जा रही है, जिन्होंने देख लिया कि यहाँ गड़बड़ा गया, पुल टूटा पड़े बताइए क्यों जा रहे हैं, वो इशारा कर रहा मत जाओ, फिर भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अचानक इधर की गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी बचने वाली, तो लोग कहीं उतना जाना कि इधर से मोड़ नहीं जाते, सीधे पीछे पीछे लग जाते हैं। तो जो बचना चाहते हैं, जो सेव होना चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, उनका आचरण, उनका एटीट्यूड, उनके डायरेक्शन अलग होगी है ना, रहेंगे इसी समाज में, तो उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अभी अपने जीवन का लक्ष्य कुछ और बना के बैठे है कि नहीं। तो हर भक्त को चाहिए कि वो पूरी तन्मयता के साथ भगवान के पवित्र नामों का जप करे, कीर्तन करे, अध्ययन करे और अपने आप को शुद्ध करे, और इस दूषित वातावरण में जो दूषित हुए लोग हैं उनको भी प्रचार करे। गीता मैराथन चल रहा है, बेस्ट पूछिए, अभी कुछ बोलना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हारा लेक्चर कितनी देर तक चलेगा, उसको कितनी देर समझ आएगा, आप मेरी गीता दे दो जितने के बाद उसका उद्धार हो जाएगा। तो लें, बांटें और भर दें इस पूरे के पूरे भौतिक जगत को, माया के ठिकानों को प्रभुपाद जी के भगवद गीता के पाँव से, ताकि जब आध्यात्मिक बस विस्फोट हो तो सब जगह से कीर्तन की आवाज आए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी के टाइम पर विदेशों की धरती पर जब लोगों को हरे कृष्णा का पता चला, बड़े बड़े फुटबॉल मैच में 70-80 हजार लोग इकट्ठे खड़े हुए और सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, माय गॉड, ऐसा सुना हूं। एक स्टेडियम में तो पता था, न्यूज पढ़ते थे आजकल हरे कृष्णा बहुत हो रहे हैं, हमारे कई यंग गा रहे हैं, कुछ लोग पहुंच जाते थे वहां और कृष्ण कीर्तन मालूम पड़ गया था। फुटबॉल मैच में भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। थोड़े बड़े स्टेडियम में कीर्तन होता है, हजारों लोग कीर्तन करते हैं, तो जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं इनकी भक्ति का चक्र शुरू हो चुका है, आज नहीं तो कल ये सब लोग भक्ति में आएंगे, ये सब सब लोग इस मूवमेंट को इस पूरे के पूरे 10,000 साल में जिन्होंने आगे बढ़ना है सब लोग जाएंगे, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए कि मैं पहले जाना, नो प्रॉब्लम, करो आगे मेहनत और बाकी लोग हमको देखकर सीखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की।